तू अपने देखों पर ये कुमकुम का रंग कहां से ले आया, क्यों लाया? वो भन्न भन्न कर रहा है भौरा। स्वामी जी आप ऐसा हमारे उलझा मत लगाइए, मैं तो अपने प्रभु जी से आदेश पाकर के आप लोगों की चरणों की सेवा के लिए आए हैं, तुम्हें मनाने के लिए आए हैं। हमने अपने दुखों पर कुमकुम इत्यादि कहां से पाऊंगा जो लगाऊ? अरे तू नहीं जानता, मैं बतलाऊ ये कहां से ले आया? हमारी सौते जो वहां पर है मथुरा में, कौन सौते? अरे और नहीं है तो कुबड़ी तो होगी ही, कुबड़ी कुबड़ी ना खूब जा, मैंने कुबड़ी तो मिली ही। भौरे जब पागल हो जाते हैं तो उनको ज्ञान नहीं रहता कि ये कुंभ का फूल है न किसी का फूल, गंदे फूलों पर भी वो कभी कभी बैठ जाता है। तो वैसी प्रियाएं सुंदरी नहीं होने पर कुब्जा भी तो उनकी है ही है, शायद कृष्ण से मिली हो और मिलने के बाद में कृष्ण उनके अंगों का कुमकुम कृष्ण के बलमाला में लग गया हो और उस बलमाले पर तुम बैठा हो और उस बैठने से तुम्हारे अंगों में या तुम्हारे गोफों में ये कुमकुम लगा, खबरदार यहां से जल्दी से अपवित्र होकर के उठ जा, हमको तुम मनाएगा या हमारे क्रोध को और भी अधिक वृद्धि कर देगा। देखो कृष्णा भी जदू स्वभाव में जाते हैं, तो तुम हमारी सभा में आया तो हम आसानी से समझ गई कि बिना स्त्रियों के तो उनका एक दिन भी नहीं चल सकता, एक सेकंड भी नहीं चल सकता। और यह बात यदि जदू में मालूम हो जाए, जदू में उनको चैन से बैठने नहीं देंगे, उनका बड़ा घोर अपमान करेंगे, तो जैसा दुख है वैसा ही दुख का प्रभु है। सकृताधार इत्यादि श्लोकों का उन्होंने बतलाया, मैं दो एक श्लोक का एक श्लोक का मात्र संक्षेप में बतला करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, क्योंकि रात हो गई, कल यदि होगा तो कुछ सवेरे की तरफ ही आसान की तरफ में बतलाऊ। मृगुण कपिंद्रम दिप्त दे दुख, अरे दो गोपियां का फिर तुम यहां से चले जा, मैं लक्ष्मी नहीं हूं जो भोली भाव बातों से उसकी मैं तुम्हारी बातों को विश्वास कर लूंगी, यह हम लोग नहीं कर सकती हैं, तू चले जा उसी के लिए। देखो सुना है गर्ग गर्ग ऋषि से और सुना है पौर्णमासी जी से, जो ये प्रत्येक कुछ कुछ जन्म लेता है उस समय में ये काला ही होता है, अपना दूत भी काला भेजा है, इसलिए कृष्ण नहीं कर रही है, कृष्ण नाम उच्चारण उस समय नहीं कर रही राधिका जी, बस काला काला कर रहे। एक काला सतयुग में आया था बामन शाहरूप धारण कर, उसने सर्वस्व देने वाले बलि महाराज जी के यहां गया और कपटता से उनके राज्य मांग लिए, तीन हाथ जमीन लेने की बात की, तीन पद, और उसने लेते समय अपना पैर इतना भी सीध किया, फिर हुआ का महाजन तप इत्यादि सब एक पैर में ले लिया, दूसरे पैर में इस छोर से यहां तक ब्रह्मांड तक ले लिया और तीसरे पैर में पैर रखने की कोई जगह नहीं। तब उसने उन्हीं को माप लिया, उन्होंने अपने को सर्वस्व दे दिया और तभी उनको पकड़ करके बांध दिया। एक त्रेता युग में आया काला, वो पिता माता के आदेश से बन में गया, अपनी पिता माता आदेश से वो बन में तो गया सन्यासियों जैसा, तो पशुओं जैसा वेश बनाकर वहां पर अपनी स्त्री को भी ले गया। वो कहता है कि मैं जितेंद्री हूं, कि कोई भी स्त्री मुग्ध हो जाती है, रावण की बहन सुपर्णखा अत्यंत सुंदर रूप बनाकर के उनके पास में आई और उस समय में इसी काले ने उसकी बात नहीं सुनी, अरे पने की भिक्षा मांग रही थी, कौन सी गलती थी उसने, तुम्हारा रूप का दोष था जी, इतना सुंदर रूप बना करके आया और यदि कोई तुम्हारे रूप को मुग्ध होकर के प्रणय की भीख मांग रहा है तो इसमें गलती क्या है? गलती तो तुम्हारी है कि तुमने ऐसा रूप क्यों बनाया, मीठी मीठी बातें करके उसे हंसाया और हंसा क्यों, हंसी मजाक क्यों? उसने इसके लिए उसकी नाक कान काट ली कि आज अब से इसी से के साथ में कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, उसका जीवन ही बर्बाद कर दिया। सीता के बाद सीता के लिए, क्यों? वो स्त्री कामी है। उस जन्म में भी सीता ने कहा इस हिरण को ले आओ मारकर, सोने के हिरण। क्या जरूरत थी? कि नहीं, सीता जी ने कहा यदि जीवित पकड़ा जाए तो कैकई को उपहार दूंगी, भरत भैया को उपहार दूंगी, और यदि नहीं हुआ तो मारकर मार भी ले आओ तो मृग छला बनकर ले जाएंगे और वो भी भरत भैया को देंगे या कैकई मैया को उपहार देंगे। क्या जरूरत है उसके पीछे पीछे जाने का? लक्ष्मण जी ने मना किया, उसने माना नहीं। तो उसने जो बांदर है, बंदर को भी लोग नहीं मारते, उस बाली को उस काले ने मारा। किसने मारा? उसने कहा जब तुम्हारी स्त्री को मैं लौटा लाऊंगा, और उसने प्रतिज्ञा की हम तुम्हारी स्त्री को लाएंगे। स्त्री के लिए दोनों में मिताली हुई, दोनों ही स्त्राएं, और कहते हैं कि हम दोनों जितेंद्र महापुरुष। राम ने बाली को क्यों मारा? बाली ने कहा हमको कौन, तुमने मारा? यदि तुम कहते तो मैं सीता समेत रावण को पकड़ करके यहां पर ले आता, तुम्हारे चरणों में दे देता। सुग्रीव क्या कर सकता है? किसने हमको मारा? मैंने तुम्हारा दोष क्या किया? हमारा मांस तो मनुष्य भी नहीं खाते, किसने मारा? राम के पास में इसका क्या उत्तर था? उन्होंने गोल मटोल बातें उन्होंने कर दी कि अनुज सीता भगवनी सुत नारी, इन्हें इनको दुखने से दोष होता है, इसलिए मैंने मारा। कहा किंतु उसका उत्तर नहीं दे सके। साथ में हमारा सुलह संबंधी सुलह संभावना नहीं है, इससे तुम जाओ। भ्रमर ने कहा गुनगुनाते हुए मानो भाव नेत्र से देखा, भाव करने से सुना, तो तब उनकी बात क्यों करती हो? जब इसे सुलहनामा नहीं होगी और जिनको तुम प्यार नहीं करती तो फिर उनकी बातें क्यों सुनती हो? तो यही तो बात है, मैं उनके बातों को नहीं छोड़ सकती, उनके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकती। जो एक बार जिनके कानों में कृष्ण नाम पहुंच जाता है, सब क्या है? सभी तो अनुचरित है, जब अनुचरित लीला कर्ण पीयू सपित्र। एक बार भी जिनके कानों में कृष्ण नाम पड़ जाता है, उनकी कथाएं पड़ जाती हैं, वो घर बार को छोड़ करके दंड धर्म, माता पिता को छोड़ देता है, अपनी स्त्री को छोड़ देता है, अपनी बहन को छोड़ देता है। बहन यदि सुनती है, पत्नी सुनती है, तो अपने भाई को, अपने पति को, सबको छोड़ देती है, जैसे गोपियों ने छोड़ दिया। हमारी यह दुर्दशा, बहुत से लोग अभी भी वृंदावन में, लड़के ही केवल नहीं लड़कियां भी, विवाह शादी किए बिना घर को, माता पिता को, भाई बंधु को छोड़ करके दिन भर रोते रहते हैं, भिक्षा से किसी प्रकार से जीवन में निर्वाह करते हैं। घर नहीं है, द्वार नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, और पक्षियों जैसा इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उनका जीवन चर्चा ही ऐसा हो जाता है। इसलिए जो लोग सुन रहे हो, वो कृष्ण की किसी नाम को मत करना, उनकी कथाओं को नहीं सुनना, नहीं तो हमारी जैसे उनकी स्थिति हो जाएगी, गोपियां कह रहे हैं। तो आप लोग भी संभाल बूझ करके, समझ सुन करके, उस भूत और छली कपटी का नाम आप लोग लें, नहीं तो गोपियों जैसा बिल बिलाना होगा, गोपों जैसे बिल बिलाना होगा। कृष्ण गोपियां अंत में कहती हैं, ओहो हमने अभी तक तो तुम्हारा बड़ा मेरे आदर किया, किंतु हमारे प्रियतम ने तुम्हें भेजा है, आओ आओ। अच्छा ये बतलाओ, ब्रज का समाचार ठीक है? वहां पर क्या कभी कृष्ण हम लोगों को कभी भूल से भी पूछते हैं जो गोपियां कैसी हैं, नंद बाबा कैसे हैं, उनके सखा कैसे हैं, पूछते हैं कभी भूल से भी? अरे कभी ऐसे भी पूछते हैं कि ये जो फूल की माला तुमने बनाई है, गोपियों जैसी सुंदर नहीं, इसमें इतना आयत नहीं है, या कभी ऐसा कहते हैं गोपियां ऐसा नहीं बना सकते, इसलिए तुच्छ ताच्छल्य में भी हमें स्मरण करते हैं। कभी कोई चीज उनको सुंदर रूप से कोई चीज देता है, कहते हैं कि गोपियां ऐसी नहीं कर सकती, ऐसा भी करते हैं। भूल से भी कभी हमारा स्मरण क्या करते हैं, और ऐसे कहते हैं गदगद होकर के, हा कृष्ण कहती हुई मूर्छित होकर के गिर पड़े। उद्धव जी देखते रह गए। इसके बाद में उद्धव जी ने उनके लिए जो प्रार्थना की है, बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणुमभिक्षसा हरि कठोर गीत पुनात भुवन प्रेम, उस प्रकार से गोपियों की चरण की वंदना की। अब कल उसके संबंध में कहेंगे, आज अभी आरती होगी, और आरती के बाद में अन्नकूट का जो प्रसाद है, अन्नकूट का प्रसाद आप लोग सब लेकर के तब जाएंगे।
उसी के पहले से ही वो अनुरक्त है, बस उसी के साथ में अनुरक्त रहे, विवाह होने पर भी उसी के साथ। कहीं कहीं पर नाट्य शास्त्र इत्यादि में ऐसा देखा जाता है, खराब होने पर भी ये चल सकता है। जैसे चंद विकास आप लोग शायद नहीं जानते हैं, एक भोबिन की लड़की थी और चंडीदास बड़े विद्वान संस्कृत के और ब्राह्मणपुर के श्रेष्ठ व्यक्ति थे। बचपन में ही दोनों का प्रीति हो गया, उन्होंने भी शादी नहीं की, उसने भी शादी नहीं की और उसी के साथ में रह गए और भक्ति की पराकाष्ठा उन्होंने लिखी अपने ग्रंथों में, दोनों परम भक्ति। उसकी शादी हुई थी दूसरी जगह लड़की थी, तो दोस्त पति के साथ में नहीं जाकर के अपने घर में ही रही और उनसे मुक्ति करी और भक्ति में डूबती रही, ये भी डूबते रहा। ये चंडीदास जी तो चंद महाप्रभु के बनाए हुए पदों को सुनते हैं और बड़े उल्लसित होते हैं। तो शास्त्र में कहीं कहीं पर इस नायिका को कहीं ले लिया गया। अब तीसरी वो है, उनकी शादी होने पर भी कोई दूसरा पुरुष नहीं, अपने पतियों से कोई संबंध नहीं, कृष्ण को ही अपना पति और अपना सर्वस्व मानकर प्रिय सम्मान करके उनकी सेवा करने वाली है, ये यथार्थ में पति पिता। जैसे राम की पत्नी मंदोदरी अहिल्या जी, बाली की पति तारा, द्रौपदी जी कुंती तारा अहिल्या मंदोदरी और ये पांच ये जो स्थितियां हैं उनको कन्या कहते हैं, उनको विवाहित भी नहीं मानते। राम जैसा दुष्ट मंदोदरी का पिता पति था, किंतु वो कृष्ण को राम को ही अपना पति मानती थी, इसलिए वो कन्या में गई। द्रौपदी के पांच पति हैं, सभी कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझती, कुंती उनके बेटे के समान है और उनको अपना प्रियतम समझती है, उनको भी पांच पति हैं, पांडु तो ही है, धर्मराज है, वायु है, इंद्र है, सभी को कन्या कहा गया। इसलिए कि कृष्ण में जब भी भक्ति है और कृष्ण को ही सर्वस्व समझा जाए तो वो सबसे अधिक होता है। इसलिए हमारी शादी हो न हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, कृष्ण को अपना परम पति मान। गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ करके कृष्ण की आराधना की और उनको ही अपना परम पति माना। देखो जगत में ब्रह्मा शंकर क्या कृष्ण चंद्र स्वयं भगवान होकर के परम ब्रह्म होकर के उनकी चरणों की सेवा करते, ये सब शिक्षा है। उद्धव जी को देखा और तो गोपियां प्रेम के जीत एकदम सीमा पर आ रहे हैं, ऐसा कहीं विश्व में भक्ति नहीं है। इसे श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य भी चाहे गोपियों का प्रेम और उसमें राधा जी का प्रेम और प्रतिपाद्य। इसलिए राधा जी को मनाने के लिए देखो कृष्ण राज पंच अध्याय इत्यादि में जिसमें उद्धव लौट करके जा रहे हैं, उद्धव जी ने कहा मैंने आकर के आपसे बतलाया कृष्ण आपके प्रेम में सर, मैं लौट करके उनको क्या कहूं। राधा जी कुछ नहीं बोली, कभी जरा आप बतलाइए कि मैं कृष्ण से आपके लिए क्या संपा दूं। उन्होंने कहा देखो तुमने कृष्ण को समझा नहीं, कृष्ण की भगवत्ता तो तुमने समझी, उनका प्रेम का हृदय तुमने नहीं समझा। वो मक्खन से भी कोमल है, होता है मक्खन हाथ में लेने से हाथ की गर्मी से पिघल जाता है, ये बात ठीक है, तो कृष्ण उसके नाम से ही पिघल जाते हैं। तुम जाकर के खबरदार ये मत करना है जो गोपियों तुम्हारे प्रेम में बड़ी दुखी है, ये खबरदार है। श्वेत कृष्ण इसको कहने तक से मर जाएंगे। इसलिए तुम कृष्ण से कहना, देखो गोपियां बड़ी प्रसन्न है, उनको कोई कथन तुमको भूल चुकी है, तुम भूल सकते हो तो वो भी भूल सकती है, इसे तुमको पूर्ण रूप से भूल गई है। अरे तुमको तो गाली देती है, चोट चोट काटाती है, तुमको दुख भी कहती है, तुमको लंपट भी कहती है, ऐसी गालियां देते हैं, ऐसे जाकर के कहना हम उनका स्मरण नहीं करते, ऐसे कहना, फिर दूसरे दिन कुछ कहना, फिर तीसरे दिन कुछ कहना, धीरे 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 तब उनको बतलाना है जो गोपियां आपके अच्छी रहते हैं, नहीं तो कहते हैं पुराना कपड़ा भीगा हुआ पानी में भीग गया, उसको जोर से मत निचोड़ो, फट जाएगा। इसलिए कृष्ण को जाकर के हमारे जीवन की बातें मत बतलाना है, नहीं तो उनका हृदय कोमल है, वो फट जाएगा उनका, उद्धव जी देखते ही रहते। इसलिए उन्होंने जाकर के कृष्ण से ऐसे ही कहा, उद्धव जी जाकर मारे चले गए, उद्धव जी चले गए, ब्रज में नहीं रहे, क्यों कह रहे ओह गोपियां कृष्ण के प्रेम की ये दुख बजा है और ये कितने दुख से बिल बिला रही है, कितना दुख, कहीं मुझे भी यह दुख न हो जाए। उस प्रेम की अंतिम सीमा को ग्रह को उन्होंने दुख मान लिया और यहां से भगे, बोले बहाना उत्तर से मैं तुमको लेकर के बहुत से जल्दी से लौटा, कृष्ण को लेकर के लौटे कभी, बस यही प्रार्थना की बंदे मंत्रे तीनाम पाप रे नुमा मैं गोपियों की चरणों की बुरी की मैं वंदना करता हूं। इस प्रकार से लौट गए कृष्ण को देने के बाद में लौटे तो नहीं किंतु मथुरा छोड़कर के और दूर चले गए हजारों मील द्वारका में चले गए। यहां तक खुद बात हुआ, अब उसके बाद में उत्तराधिक की कथा, आपको उत्तराधिक रुक्मणी इत्यादि की बातें बतलाई होंगी, उनके कैसे विवाह इत्यादि हुए हैं, थोड़ा सा रुक्मणी का प्रसंग मैं और थोड़ा सा आप लोगों को बतला था। विवाह के बाद में उनको लड़के भी हो गए। एक दिन कृष्ण रुक्मणी जी के राजभवन में बैठी थी राजभवन, रुक्मणी जी अयोध्याओं के हाथ से पंखे ले लिया और चमक अपने हाथ से दो लाने लगे, सोने के कंकर बाजू बंद इत्यादि, कानों में कुंडल, अपूर्व सुंदरी उसमें विश्व की सबसे सुंदरी किशोरी होती, सब गुणों से संपन्न, आज अपने हाथों से पंखे और ये सब ला रहे। कृष्ण बैठे हुए हैं, कृष्ण को कुछ सुझा, उन्होंने जरा गंभीर भाव से उनसे कहा, देखो रुक्मिणी जी मैंने बहुत ही अन्याय किया, मुझे नहीं करना चाहिए, वो चुपचाप सुन रही है ये बोलते हैं, मैंने अन्याय किया जो तुम विश्व की सबसे सुंदरी लड़की हो और बड़े बड़े राजकुमार क्या बड़े बड़े देवता लोग तुम्हें चाहते थे विवाह करना, यहां तक तुम्हारे पिताजी ने भी और मैया ने भी भाई ने भी बाग काम दे दिया था, ये तुम्हारी शादी किस पाल से कराएंगे, और मैं बीच में पहुंच गया, तुम किसी मन होते थे फकड़ के चाल में चल गए, फकड़ पाओ नारद जी, नारद जी के मुझसे कृष्ण के ये महिमा गुण सुनी थी, अरे तुम ऐसे किसी अकिंचन और ऐसे आदमियों के फेर में पड़ करके हमारे पति तुम आसक्त होकर के हमको पत्र दिया, मैं तुमको विवाह करने के लिए नहीं गया, इसलिए गया मैं अपनी आन रखने के लिए गया, जादू तुम हमारे समय में शरणागत थी और तुमको चाहने वाले जरासंध इत्यादि और शिशुपाल बड़े बड़े राजा दुर्योधन इत्यादि भीष्म पितामह इत्यादि सभी तुम्हारी सेवा करने के लिए आए थे, जैसे शिशुपाल की शादी होगी कोई भी व्यवस्था में गड़बड़ी हो तो हम लोग देते, सभी लोग आए थे, मैं उनका मान मर्दन करने के लिए और सबको परास्त करके तुम्हें ले आया, मेरी बस यही इच्छा थी और उनसे शादी करने में देते हो। देखो मैं संसार में सबसे काला, कोई तेरे अंदर में गुण नहीं, और तुम विश्व की श्रेष्ठ गोरी और सुंदरी हो। तुमको चाहने वाले बड़े बड़े राजा महाराजा के सुंदर से सुंदर लोग डरते हैं, और हमको संसार में जो असहाय हो जाते हैं, जिनको कोई नहीं देखता है, ऐसे निर्धन, ऐसे असहाय, सबसे उपेक्षित, बस वही केवल हमारा भजन करते हैं, हमको और लोग नहीं चाहते। देखो एक बात है, हमारा पथ दुर्गम और गम है, हम लोग क्या चाहते हैं कोई कब किसी को पता नहीं। हमारे जो शरणागत होते हैं उनको पथ का भी भारी बना देता हूं, उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूं, और हम बड़ा निष्ठुर है, तुम सब प्रकार से हमारे अनुगत हो, किंतु तुमसे हमारा क्या हो सकता है, कोई भी नहीं अवसर। मैं यही चाहता हूं कि तुमको चाहने वाले बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नरेश लोग, बड़े सुंदर संत हैं, उनमें जिसको कहो उसी के पास मैं तुमको पहुंचा दूं, और तुम सुख और शांति से जीवन करो। हमारे यहां तुमको सुख और शांति नहीं होगी, क्योंकि हमने वो गुण नहीं है। मैं तो राजा भी नहीं, हमारे राजा महाराज उग्रसेन है, इसे जैसा कहो वैसा ही तुमको कर दू, अभी आज ही चल करके तुम्हारे तुमको पहुंचा दू, तुम सुखी रहो, तुमको यहां पर दुखी देखते हुए हमारा मन दुखी हो जाए। रुक्मिणी ने सुना, धीरे धीरे बेहोश होने लगे, हाथ का पंखा गिर गया, चमर गिर गया, और जैसे केले का वृक्ष आंधी में उखड़ करके एकदम गिर जाता है, ऐसे ही गिर गए। कृष्ण ने देखा जैसे ये तो गड़बड़ी हो गई, अरे हमने तो मजाक किया था गोपियों से, कितने प्रकार के मजाक करता था, तो गोपियां तो बड़ी मुस्कुरा करके या कुछ मांग करके हमको उचित शिक्षा दे देती, तो उस समय मैं भी खुश हो जाता। अरे संसार में यही तो आराम है कि दिन भर का मनुष्य पुरुष काम करते हुए एकदम थक जाता है और शाम को आता है, तो पत्नी कभी बड़े प्रेम से मुस्कुरा करके उसे कुछ बोल देती है, ठंडा पानी एक ग्लास दे देती है, कुछ रसोई बनाई हुई मीठी चीज दे देती है, सबसे अच्छी मीठी बोल देती है, पेटों को लेकर के गोदी में दे देती है, यही तो संसार का मधु है ना, और संसार में रखा क्या है। तो संस्कृत जी ये तो मरी इस हास्य परिहास को समझ नहीं सकी, चार भुजाएं उस समय उनकी थी, कभी कभी चतुर्भुज और कभी चतुर्भुज, चार भुजाओं से उनको उठाया लेकर के अंग में लगा, कानून और बोले प्रिय मैं सिर्फ तुमसे ये परिहास कर रहा था। परिवार में रहने पर दो खड़े परस्पर थरथर करते हैं, तो कभी प्रेम से बोलना, कभी थोड़ा सा परस्पर में रुष्ट हो जाना, मांग कर लेना परस्पर, यही तो संसार का युग है। हम तो इसीलिए मैंने सोचा, आज मैं बहुत थोड़ा सा तंग हो गया था साथ करते करते, तो क्या दे जाएंगे कुछ ऐसी बात कहेंगे, रुक्मिणी जी रुष्ट हो जाएंगी, मुंह खुला लेंगी और जरा आंखों को टेढ़ी करके हमसे कुछ मान भरी कुछ बातें कहेंगी और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं क्या जानता था तो इतनी शर्म सुधी और इन चीजों को समझ नहीं सकती, मैं तो नहीं करता, मैंने तो पंडार किया। अरे मैं जब गोपियों से पंडार करता तो गोपियां कहती हमारे खुद से निकल जाए धूप से क्या करते, हमको निकालने के लिए कहती, और मैं वो सुन करके एकदम आनंद से विभोर हो जाए। मैंने ही जानता था कि तुम कितनी सुकुमार और कितनी सर्वसिद्धि है, एक साधारण सी बात तुम नहीं समझते। जब ऐसा कहा धीरे धीरे तो उनको कुछ होश हुआ, उठ करके धीरे 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 सचेत होकर के कृष्ण के चरणों में गिर गई, बोलिए देखिए आपने ये जो कहा जब मैं तुम्हारे जो बने ये बात की कहा, अरे ब्रह्मा इत्यादि सब ईश्वरों के ईश्वर, जब यही लोग आपका खा नहीं पाते हैं, हजार उपासना करके नहीं पाते, ये सबसे आप आराध्य हो, ऐसे महापुरुष के लिए भगवान के लिए मैं कैसे चुप हो सकूं, ہم کو چاہنے والے کون ہیں؟ جو تریگن سے بندے ہوئے کام کی پورتی کرنے کے لیے کیڑے ہیں وہ ہم کو چاہتے ہیں. اور آپ کو پرمہنسا نارد جی جیسے سکھدیو گوسوامی لوگ جیسے یہ لوگ ان دھیان میں آتے چرن کملوں کو پراپت نہیں کر پاتے. تو میری کیا وچار اسے سچو سمے چکے آپ نرگن ہیں ان جگت کے گن ہیں ست رجتم سنسار اسی میں مر رہا ہے اور آپ ان تریگن ست اپرت سوروپ والے سدا برج میں رہتے ایسی ملا ملا کرنے والے بڑا آپ کی دل ہو سکتی ہے. میں ان گوپیوں کی چرن کی دھلی ہو سکتی ہوں. پربھو میں آپ کے چرنوں کو چھوڑ نہیں سکتا, چھوڑنے سے میں بچ نہیں سکتا. اس لیے کرپا کریں گوپیوں کے خود کم کم سے رنگے ہوئے آپ کے جو چرن کمل ہے اور اس میں تلسی کا مکرن جو اس میں لگا ہوا ہے بس ان چرنوں کی سگندھ کو میں سب تمام اس کی سیوا کر سکتا. میں اور کچھ نہیں چاہتا. کرشن سن کر کے بڑے پرسن ہو گئے. پھر ان کا گھریلو جیون کیسا چلنے لگ گیا. اس میں بہت سی شکشائیں ہیں, ان شکشاؤں کو ہم لوگوں کو گرہن کرنا. اس کے بعد میں ہم چلتے ہیں جیوت تھا نام کا راکشس, راکشس میں بندر تھا. وہ رام چندر جی کا کبھی منتری تھا. دیوی اس کا بھائی, اس کا بھائی مندر اس کا بھائی تھا اور وہ بھمن کا بڑا متر تھا. پیچھے بن گیا رام اور رام کے یدھ کے سمے میں رام کی سیوا کی, کنتو لکشمن جی سے اس کی نانے نے کیوں انبن کی. لکشمن جی کی مہیما سن کر کے وہ جلتا تھا. اب وہ دھیرے 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 بھماسور اتیادی کے متر بن کر کے ان کا دیوی اور ہو گیا. کتنے کروڑ برس بچ گئے جیت گئے تبھی اور رام کرشن لیلا کے سمے میں بھی تھا. بھکتوں کے پرتی جو آچرن کرنے سے بھگوان کی سیوا کرنے سے بھی بھگوان اس کی رکشا نہیں کرتے. اس لیے دیوی رام کا بھکت ہونے سے بھی اب جب کرشن نے ہومیشور کو مارا اس کے متر کو تو اس کو بڑی پیڑ ہو گئی. کرشن جہاں آتے تھے مہاراشٹر وہ کاتیا باد کے بھاگ میں وہاں پر اسی راج میں وہ بھی جاتا تھا. اب ان سے دیش کرنے لگا, بغاوت کر دی, کرانتی کر دی اور کرشن کے بھکتوں کو اجاڑ اجاڑ کر کے نشٹ کرنے لگا. کبھی کبھی دوارکا پوری سے سمندر کے پانی میں بہا دینے کی چیشٹا کرتا. ایک دن یہ حکم پر رمن پروت کیا کیا رجوا تک پروت کوئی پر بندے جی اپنی پریاؤں کو لے کر وہاں پر ان کے ساتھ میں بہار کر رہے ہیں. اس کو دیکھ کر کے وہی پردے پر چڑھ گیا, گندی گندی حرکتیں کرنے لگا اور ان کو چڑھانے لگا اور یہاں تک ہی ان کا مدھو کا پاتر لے کر چھین لے گیا اور استریوں کو بھی دیکھ کر کے اور ان کو چڑھانے لگا. کبھی کبھی کوئی بھکت بھی سادھار یعنی دوسرے لوگوں کے شرم میں آ جائے تو اس کی دربتی ہو جاتی ہے. اسے بھکتوں کا دوہ نہیں کرنا چاہیے, بھگوان سے بھی بڑھ کر کے بھکتوں کا سمان کرنا چاہیے. جس کا یہی بات دو سنگ سے سادھن سنگ سے لوگ کہاں بھگوان کی پراپتی کر جاتے ہیں اور کسنگ میں رہنے سے اس کی بھی بدھی بگڑ جاتی ہے. بندے پربھو جی نے ساتھ ہی ساتھ میں ہل اور مسل سے اسے ہل سے پھینک کر کے اور مسل سے اسے مارا. اس کا مقصد ریٹرن ہو گیا اور اس کی دھگتی. اس لیے سب میں ساتھ سب میں رہنے کی چیشا کرنی چاہیے جس سے کہ وچار اچھے رہے اور بھگوان کے پرتی بھکتی بنی رہے. بہت سے لوگ اس میں بگڑ جاتے ہیں. اس لیے سب میں سادھو سنگ میں کی منتا ہے سادھو سنگ کے دوارا ہنومان جی بندر ہوتے ہوئے بھی دیکھیے کیسے چلے گئے اوپر. سگری جی بھی بندر تھے ریچ جامون سب جملادی اتیادی نارد جی کے سنگ سے کیسے ہو گئے. پرہلاد نارد جی نارد کے سنگ سے ایسے ہوئے. جن کو جن کو بھکتی دیکھی جاتی ہے وہ سب سادھو کے سنگ کا پربھاؤ. اس لیے سچے سنتوں کے سنگ کا جو لوگ یہ کہیں جگت جھوٹا ہے میں ہی برہم ہوں کہ وہ ہم ان کا جھوٹ کر کے بھی سپنے میں بھی ان کا درشن مت کریں. سنگت جی کو ساتھ میں گرو مانیے पार्वती जी को गुरु मानिए, शंकर जी यहाँ तो कंसेश्वर है नहीं, यहाँ रंगेश्वर उसकी सेवा करने वाला, कंस की क्या दुर्गति हुई, इस चीज को याद रखनी चाहिए। तांत्रिक उपासना उनकी नहीं होनी चाहिए, उनको गोपीश्वर के रूप में समझो और अमर के सम्मान दो, भगवान के रूप में नहीं। अब नहीं तो हमारा सब कुछ भक्ति चौपट हो जाएगा। शंकर का दिया हुआ वहां पर जो प्रसाद और भस्म जो होता है उसको मत धारण करो, नहीं तो संसार की वासना आ जाएगी। उनको प्रणाम करो, परिक्रमा करो, पानी भी दे सकते, किंतु जगत गुरु के रूप में या उनको भगवान के रूप में करो, नहीं तो वो भी रुष्ट हो जाते हैं। इसे इस सबका विचार होना और नहीं तो मनमानी भक्ति करने से भक्ति नहीं होती है, इसे शास्त्र के अनुसार नहीं करते, इसे भक्तों का कर्म होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते किंतु अपनी प्रशंसा के लिए भगवान नाम का कीर्तन कराते हैं, भागवत भी पाठ करते हैं और कहते हैं शिवो हम शिवो हम हम ब्रह्मास्मि मैं नहीं। ऐसे लोगों को रावण की कोठी में समझा जाए, रावण को उसके लोग उनका संग दोष दूर से ही पड़ जाए। ऐसी बहुत सी बातें हैं, साढ़े सात बजने जा रहा है, यदि कल होगा तो हम कृष्ण लीला चरित्र का रहस्य, कृष्ण का और उनके परिकरों का जो युद्ध इत्यादि देखा जाता है, कैसे उन्होंने आत्मगोपन किया, ये सब लीलाओं के संबंध में कल कुछ बोलेंगे। आज ही प्रमाण गौर प्रमाण कल बतला दिया, कल समय प्रार्थना ये करेगा कि हमारी बालकों की टोली में कृष्ण कन्हैया बंसी बजाते हुए जरा आए तो देखो तो
बाय उठा दे हो सुना है मैं कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे
धारी श्री राधा विनोद बिहारी जीव की विष्णु पाद अपनी ब्रजगाचार्युशांत बामन गोस्वामी महाराज की जय विष्णु पाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय निद्रिला प्रमुख विष्णुपाद शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय जगत गुरु निद्रिला प्रमुख विष्णुपाद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय जय शिल गौर के श्रद्धाचार्य जी महाराज की जय श्री सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर की जय वैष्णव सर्वश्रद जगन्नाथाचार्य जी महाराज की जय श्री रूपान गुरुवर्ग की जय अनंत वैष्णव वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय सचिनंदन गौर हरि की जय निताय गौर श्रीमानंदे हरि हरि बोल
ಚರಣ हम लोगों का श्रीमद् भागवत कथा आठ दिनों के बाद में आज समाप्त हुई। आज अक्षय तृतीया है। आज अक्षय तृतीया का विशेष दिन है। आज जो भी पारलौकिक कार्य किए जाएंगे वो कार्य अक्षय होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। यदि आज के दिन कोई दान पुण्य भी करे तो अक्षय होता है, किंतु कितने दिन के लिए? देवताओं के आयु तक के लिए। एक मनु का जितना पीरियड है उतने दिनों के लिए वो अक्षय होगा, फिर वहां से गिराएगा। किंतु उस दिन यदि कोई आत्मा की कथा सुने, भगवान की कथा सुने, भगवान की लीला कथाएं सुने, तो वो फल कैसा होगा? अक्षय होगा, कभी भी समाप्त नहीं होने का। और जो लोग आज के दिन में श्रीमद् भागवत का अंतिम विषय, भागवत का प्रतिपाद्य विषय माने उसका सार ये है, गोप गोपियों ने जिस भावना से कृष्ण की सेवा की और कृष्ण ने उनकी सेवा को ग्रहण किया, यही भागवत का सार है। ब्रज के सखाओं ने उनकी कैसे सेवा की, यशोदा मैया ने कैसे सेवा की उस परब्रह्म को अपना बेटा मानकर, यहां तक कि घरों में चोरी कर रहा था उसके कान उमेट दिए, पोखर के साथ में उनको बांध दिया और उस बंदर को खोल नहीं सके, वो उनका कोई सखा तक नहीं खोल सका, उसको उन्होंने ग्रहण किया, इसके बसीब खुश हो गया। इससे भी यदि गोपियों ने अपने प्रेम से ऐसे बांध दिया कि उन गोपियों के साथ में रास करना पड़ा, गोपियां थक जाने पर कहते हैं कृष्ण वो जो विश्व ब्रह्मांड के अधिनायकों के भी अधिनायक है, पर ब्रह्म है, वो कहते आप थक गई, आपके चरण दबा दूं, सेवा कर दूं, उनके पैरों के महावर यदि निकल जाते हैं तो उनको फिर से रंग देते हैं और कहते हैं कि देवियों मैं आपका ऋणी, आपके प्रेम का बदला मैं नहीं दे सकता, एक दो जन्म में नहीं करोड़ों करोड़ों की आयु में भी आपके इस प्रेम का जो हमारे लिए तुम लोगों ने घर बार सब छोड़ दिया, अपने पति का स्नेह भी छोड़ दिया, भिखारिन बन गई, पथ की भिखारिन, मैं इस प्रेम को कैसे भूल सकता जो लोग हमारे लिए घर बार छोड़ देते हैं, स्त्री पुत्र परिवार का प्रत्याग कर देते हैं, लोग सम्मान को भी प्रत्याग करते हैं, उसके लिए भला मैं कैसे उनको छोड़ सकता हूं? कदापि नहीं छोड़, मैं पहले उनका सर्वस्व हरण कर लेता हूं, पुत्र परिवार धन संपत्ति मान इज्जत सब उनका हरण करके पद का अधिकारी बना देता हूं, तभी हमको नहीं जल्द छोड़ते हैं, मैं अपना सर्वस्व उनको दे देता हूं, उनको कभी भी नहीं छोड़। गोपियां ऐसे भक्तों में, ऐसे कृष्ण की प्रियाओं में सबसे श्रेष्ठ, उनकी जो कथा सुनता है आज के दिन उसका अक्षय फल होकर के गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा मिलेगी। आज के दिन जो लोग नंदगांव से बरसाना पहुंचे होंगे, श्रीमती जी का दर्शन किया होगा, उनकी कथाएं सुने होंगे और फिर वहां से गोवर्धन होते हुए उसी रास्ते से फिर यहां आए कृष्ण की जन्मभूमि और फिर यहां से जाएंगे वृंदावन और वहां पर राधा गोविंद गोपीनाथ और बिहारी जी के और राधा जी के चरणों को आप लोग रखें। बीच में आप लोगों को कुछ कष्ट हुआ होगा, गोवर्धन में जाकर के भी उतरे नहीं, बात ठीक है, किंतु यहां का कीर्तन का माहौल आप लोगों ने देखा, कुछ हरिकथा सुन रही हैं और कुछ वृंदावन में जब जाएंगी बिहारी जी के चरण देखेंगे, लाखों लोग थक कामुकी करके जा नहीं पा रहे हैं और वहां पर जब आप लोग जाए और अक्षय तीज के दिन में आप लोग समझे कि हमारा जीवन सफल हो गया और रामचंद्र जी ने हमारे के साथ में ये अन्याय नहीं किया, गोवर्धन में नहीं मिला, यदि कुछ गलती भी हो गई तो इसलिए इन्होंने किया, आप लोगों को खाने पीने में कोई असुविधा न हो, दोपहर में आराम करेंगे और प्रेम से यहाँ की कथा सुनाएंगे और फिर वृंदावन में जाकर के वहां पर रात में निवास करेंगे, बिहारी जी का दर्शन करेंगे, काशी में वहां पर सेवा कुंज है जहां पर कृष्ण उनके चरणों को पलोट रहे हैं, जहां पर उनका राज हुआ था, जहां पर दामोदर जी का मंदिर है, गोविंद जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर। इसलिए आज जो ये सब अनुष्ठान हो रहा है उसमें आप लोग जो भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं, इसका अक्षय फल होगा कोई भी इसमें इधर उधर नहीं कर सकता। यदि आप लोगों के इधर आने से किसी प्रकार से आप लोगों का चित्त एक सेकंड के लिए भी राधा और कृष्ण के तरफ में हो गया, यदि आपका मन छू लिया राधा कृष्ण के चरणों को इस कथा के माध्यम से, तो ये जन्म जन्मांतर में ये भाव की जो संस्कार है ये नहीं बदले, ले जाएगा वहां तक, ऐसा विश्वास रखें। जो लोग आए हुए हैं उन लोगों से निवेदन ये है, अंततः गले में तुलसी की माला हो, मुख में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, प्याज लहसुन मत खाना, अंडे गोश्त ये मत खाना, ये उसको बर्बाद कर देगा। खान पान के सहित में भजन का भी कुछ बंद, इसलिए सदाचार अवलंबन करते, बिना मांस मछली या प्याज के हम जीवित नहीं रह सकते। अभी इंग्लैंड में सुनते हैं जो वहां के सब लोग वैसे ही हैं नास्तिक, उन लोगों ने कहा यहाँ के गाय पगली हो गई हैं, इनका मांस खाने से आदमी पागल हो जाए, पगला रोग हो। वहां के किसी ने लाख गाय को काट करके और समुद्र में फेंक दिया, मांस मत खाओ, सब लोगों ने धड़ाधड़ मांस खाना बंद कर दिया कि कैंसर हो जाए। तो यदि वो छोड़ सकते हैं गाय का तो बंद कर रहे हैं, ये तो महापाप, किंतु आप लोग मांस मछली प्याज लहसुन गले में तुलसी माला दे, मैं कृष्ण की हूं, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, ऐसा समझ करके यदि थोड़ा सा भी भजन किया, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भी किया, तो इसका इतना बड़ा भारी संस्कार होगा, जन्म जन्म में ये संस्कार नहीं बदलेगा, जब आपके तरफ में आंख उठाने का साहस नहीं कर सकेगा। अजामी ने एक नारायण नाम बोला था, वो अपने बेटे के लिए, और जम के दूत उसको उसके पास नहीं गए, नारायण के जो दूत हैं उन लोगों ने उनको मारकर वहां से भगा, वो दौड़ करके जम से पूछे कि ये हमको भगाने वाले कौन है, नहीं तुम कहां गया था, अजामी को पकड़ने के लिए गए थे महादुराचारी, तो वो कहते हैं कि जिसने नारायण नाम कर दिया इसका पाप दूर हो गया। अरे बेटा ऐसा ही समझो, जो लोग के गले में तुलसी माला देखना है ये भगवान का बकलेश है, बकलेश क्या होता है, कुत्ते को कुछ एक डाल दिया जाता है ये मेरा कुत्ता है, उसको नहीं मारता, जिसके कुत्ते के गले में नहीं कुछ है उसको मारेगा, इसका मालिक नहीं है, ऐसे ये चिन्ह है मैं भगवान का हूं, इसलिए जम के दूत उसके तरफ में आंख उठाकर नहीं देख सकते, एकदम गारंटी है। इनके लाख अर्थपुंड है, ये चिन्ह है कि मैं कृष्ण का भजन करने वाला हूं, विपत्तियां भी दूर हो जाएंगी, भगवान ने जीवों पर दया करने के लिए इन चीजों को भेजा है, भागवत को भेजा, गीता को भेजा, कृष्ण के अवतार होते हैं वो आते हैं, चेतन महाप्रभु ने आकर के चेतन का प्रचार किया और उन्होंने सब आदेश दिया सरल सहज रूप में। अभी तो आप लोग बैठ जाती तो अच्छा था, ये होने के बाद में आती तो अच्छा, अब इन लोग बैठ गए तो आज अक्षय तिथि है, आज 6 महीने के बाद में वहां बद्रीनारायण में बद्रीनारायण का कपाट खुले, हजारों लोग बर्फ को हटा करके आ जाएंगे दर्शन कर, धीरे धीरे पिघलता जाएगा बर्फ और लोगों की भीड़ होती है, पहली बार खुलेगा इस पर आज ही के दिन में जगन्नाथ जी के मंदिर में उनकी चंदन यात्रा होगी, चंदन यात्रा मैंने किया, अब गर्मी पड़ रही है ना, इसलिए राधा जी को राधा कांत को लेकर नौका में भी बिठाया जाएगा, बड़ी बड़ी सरोवर, अब उसमें सुंदर नौका हो उन पर उनको बैठाया जाए, चमर इत्यादि दूल्हे में चंदन से उनको लीप किया जाए, कहीं कहीं ठाकुर जी को पूरा एकदम चंदन से भर देते, और जब तक गर्मी रहेगी तब तक उनको रोज चंदन दिया जाता है, मलय चंदन। क्यों ऐसे गर्मी आरंभ हो जाती है, इसे ठाकुर जी की ये सेवा होती है। सब समय अपने जीवन में देखना चाहिए, वही काम हमको करना है जिससे कि भगवान प्रसन्न हो सके और भगवान के भक्त लोग प्रसन्न हो, बस ये देख करके काम करो। अपने सुख के लिए मत करो, अपना सुख माने ये शरीर, शरीर को जितना भी करेंगे दो दिन के बाद में शरीर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें आत्मा अजर और समर्थ, हमारे दुखों का कारण यही है। हम लोग सर्वथा भगवान के दास हैं, भगवान के भूलने से हमारी ये दुर्दशा हो रही है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में इस बार जन्म हमारा स्त्री और पुरुष को मिला है, ऐसा मत समझ लो कि यह पहली बार हो गया, करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद। और इस जन्म में भगवान का भजन नहीं किया और किसी के साथ में ये गारंटी है, और लाखों जन्म चले जाएंगे तो मनुष्य का जन्म यदि होगा तब मिलेगा, नहीं तो लाखों जन्म में कीड़े मकोड़े मछली गधे घोड़े सुअर निश्चित रूप में होंगे, इसको समझ लो, कोई इसको काट नहीं सकता। इसलिए इस जन्म में केवल भगवान का भजन करेंगे, भक्तों का सेवा करेंगे, इस जन्म में हम और दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। खाने पीने के लिए साधारण रूप में जो कर्म किए जाते हैं वो थोड़ा सा वो भी करेंगे, वो भी भजन के अनुकूल होकर के, भजन के प्रतिकूल झूठ बेईमानी चोरी डकैती ये सब का अवलंबन करते नहीं, शरीर के द्वारा अच्छे उपायों से इन सबको कर सकते जीवन का निर्वाह करते हुए भगवान का भजन करेंगे, हमारा जीवन का यही उद्देश्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे बौद्ध हो कोई भी हो, सबका जीवन का यही उद्देश्य। हम लोग सब समय आनंद खोज करते हैं, सोचते हैं कि शराब पीने में आनंद होगा तो उसको भी पीते हैं, गंदे चीजें खाते हैं, संसार में घूमते 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 कहीं भी सुख नहीं मिला। जब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं उपस्थित हो जाएंगे तब तक सुख गारंटी है नहीं मिलेगा, इसी को गांठ बांधो। जब तक ही भगवान की सेवा नहीं होगी तब तक में सुख और शांति नहीं होगी, इसलिए सुखी और शांति बनने के लिए कृष्ण ही मेरे हैं, मैं उनकी हूं मैं उनका हूं, यह भाव लेकर के भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करना तो कठिन नहीं है, अत्यंत सहज है। अरे 10 बार हमारे मुसलमान भाई लोग तो 15 बार 20 बार 25 बार उठते हैं बैठते हैं, और लोग तरह तरह की कठिन तपस्या करते हैं, और हमको खूब अच्छा सा स्वादिष्ट कृष्ण का प्रसाद लो, लड्डू पेड़े जिसमें जो कुछ बर्फी बंद हो खूब खाओ और हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल, बस कृष्ण कृष्ण राधे कह दिया, बस इसी से ही हो जाए। एक बार यदि जीवन में निकल गया उसका जीवन से प्राप्त हो जाए, इसे भगवान का भजन करना कोई कठिन बात, किंतु सदगुरु होने चाहिए, बिना सदगुरु के हम रास्ते पर नहीं आ सकते। इसलिए सदगुरु उदाहरण करके जो भगवान का भजन करने वाला संसार में आसक्त नहीं हो बीचों में फंसा नहीं हो और भगवान के स्वयं भजन करने वाला हो दूसरों को घर में ले जाना वाला हो तो भजन करा सकता। जितने हम देखते हैं असुर लोग हैं, जितने डकैत लोग थे, जितने अत्यंत व्यभिचारी से व्यभिचारी थे, नारद जी ने कृपा करके उन सब लोगों को पार करते थे और कहां भगवत भक्त ने बनाया, प्रहलाद महाराज जी जैसे असुर के बालक, ये असुर का बालक परम भक्त बन गया जगत में आदर्श, ये किसके लिए हुआ? अरे बंदर जिसको सवेरे देखने से पाप लगता है उसको अन्न जल नहीं मिलता, ऐसे बंदर जाति में उत्पन्न वाले हनुमान को देखो सुग्रीव को देखो जम्बवान को भालू था उसको देखो, अरे ध्रुव जैसे एक बालक को जो 5 वर्ष का नारद जी की कृपा से कैसे भगवत भक्त बना, ये जो जगत के सत्य बन गया। नारद जी भी खुद कैसे एक सुप्राणी के एक छोटी गरीब घरों में काम करने वाली एक स्त्री के लड़के थे और खनक नंदन सनातन के संग थे, कैसे वो परम भक्त। इसे यदि गुरु ठीक है वैष्णव ठीक है हमारा गाइडेंस ठीक यदि है तो भगवत भजन सहज हो जाएगा। भजन नहीं करने पर भी उसकी कृपा से ही भगवान उसके देखेंगे यही हमारे भक्त का भक्त है, बस झट उसे ग्रहण करके और अपनी चरण की सेवा में। इसलिए भगवान का भजन बहुत सरल काम है, घर में बैठे रहो
खाते पीते, उठते बैठते, जम्भाई लेते, ठीक करते थे, रसोई बनाते हुए पैर फिर चलते थे मैंने, राम राम कृष्ण का दिया, ये कौन सा कष्ट है। अरे पहले लोग 7,000 वर्ष तक सिर को नीचाकर एक अंगुली से कर रख करके और भजन करते थे बिना खाए पिए। हम लोग कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो और भगवान का नाम करो। घर में रहो, महाप्रभु जी ने कहा कि घर में रहो बाहर में रहो भगवान का भजन। तो आज ही से भजन करना आरंभ कर देना है, कल से नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं आज करो सो कल करो, और कल करो सो परसो, और क्या खटखट में पड़े हुए वो समय पड़ा है, कल परसो करेंगे नहीं। अरे कल करो सो आज कर, आज करो सो हर पल में प्रलय होएगी, बहुत करो। इसको याद रखो, कल समय नहीं होगा। रावण ने सोचा मैं कल ऐसी एक श्रेणी बनाऊंगा जो पृथ्वी से स्पर्श तक लगा दूंगा और लोग बेखट कर चढ़ जाएंगे, जब जब करने की और कुछ करने की जरूरत नहीं, कल ही बनाऊंगा। कल बनाने के लिए छोड़ दिया और दूसरे दिन रामचंद्र जी ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में मारा गया, उसे ही बन दूर नहीं हो सकता था बना दे। इसलिए ये सब करने के लिए कल से भजन करूंगी या करूंगा ऐसा नहीं, आज ही से भजन करना चाहिए। आज के दिन जगत की सृष्टि ब्रह्मा जी ने आरंभ की, आज ही के दिन। इसे अक्षय ये तीज कहलाती है, तृतीया, बहुत पवित्र दिन। आज ही के दिन भगवान ने समस्त अन्नों में से जौ की सृष्टि की थी। जौ बहुत ही गुणी शक्तिशाली होता है और सहज में हजम हो जाने वाला, और सब अन्नों से इसमें सप्तिक वृत्ति। और ये आज ही के दिन में भगवान ने आंवला बनाया था, आंवला होता है 10 आम पका पका खूब अच्छा अच्छा खाओ, सेव खाओ और आंवला का एक टुकड़ा ले लो, आंवले का गुण अधिक है, ये सात्विक है। आम वाला राजसिक है और फल कुछ तांत्रिक है, कुछ कुछ है, और ये होता है आज के दिन। उन्होंने बताया आज ही के दिन में सतयुग का आरंभ हुआ, सतयुग हुआ आज ही के दिन में। इस सृष्टि के बाद में आज ही में ब्रह्मा जी ने ये युगों का आरंभ। आज ही के दिन में और सी भी बहुत सी बातें हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई है, मुझे सब याद नहीं, किंतु बहुत सी चीज। इसलिए हरिद्वार में आज लाखों लोग करोड़ों लोग पहुंचते होंगे और वहां पर न जाने क्या क्या सब बांटते होंगे, दान देते होंगे। आज बंगाल में और जमुना गंगा का जहां जहां किनारा है बड़े बड़े भारी मेले होते हैं और लोग गंगा में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। आज हम लोग क्या दान करेंगे, क्या करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो? कुछ न कुछ जरूर दान करना चाहिए, रुपया पैसा कंबल अन्न, यहां तक कि ये सब तो आज भगवान को और गुड़ और उसमें घी मिलाकर ठाकुर को अर्पण। हम लोग क्या करें, आज हम लोग अपने को कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में दान दे दो, समझा? आज से मैं अपना नहीं रह गया, आज हम लोग सबसे बड़ा दान ये देंगे अपने गुरु के चरणों में। मैंने आज ने सावर कर दिया और गुरु जी हमको हमारे हृदय को कोमल पुष्प के रूप में, कमल के रूप में राधा जी के चरण कमलों में इसको दे। आज नहीं हो तो मन ही मन में ये तो करो, यदि वसुदेव जी ने कृष्ण के जन्म लेने पर कंस कारागार में आबद्ध थे, कुछ दान करने का नहीं, सभी मन ही मन में उन्होंने 10,000 गायें बछड़ों के साथ में दुधारी गाय को दान कर दिया, और जब उनको जब राज्य मिला तो उन्होंने फिर दान किया। तो हम लोग भी ऐसे ही मन ही मन भी कर रहे संकल्प कि आज से हमने अपने को, अपने कोमल हृदय को
पुष्कर स्वरूप में गुरु जी के चरणों में अथवा राधा कृष्ण के चरण कमलों में हमने काम कर दिया। मैं अब उनके हो गई या हो गई मैं ऐसा भावना ले लिया जाए बस हमारा सबसे बड़ा था, उससे बढ़ सकते था। समस्त दानों में श्रीमद्भागवत में बतलाया गया कौन दान सबसे बड़ा, तव कथा अमृतम तत्त जीवनम स्वभिरीतम सौम शापहम समण मंगलम श्रीमदातम भूमिते भूमिता जना। गोपिया करेंगे कृष्ण उनको छोड़ करके चले गए, अंत ध्यान हो गए, हाय हाय कटी हुई पेड़ों से पौधों से तुलसी से सबसे पूछ रही हमारे कृष्ण किधर गया, देखा हमें छोड़ करके किधर चले गए, हमारे मन को चोरी करके किधर चले गए, तन्मय होकर के एकदम कोई कोई तो तन्मय होकर के कृष्ण ही जैसे हो गए। और एक गोपी को पकड़ करके कहती है तू उतना है और उसका दूध पान कर ले उसे मारने ले, कोई कुछ हो गया उस समय में गोपिया कर रही है तब कथा सप्त जीवन, जिनका जीवन इस जगत में सप्त हो गया है, घर में रोज लड़ाई होती है पति से नहीं बनती, बेटे बड़े हो गए उनको घर से निकालते हैं और सब दुख कष्ट इस जगत में है उसको आप लोग सभी देखते हो, शरीर में रोग ऐसे हैं किसी से बनती नहीं, कितने ताप जो संसार के तापों से अत्यंत गलित होता है उसके लिए भगवान की कथा कहती है अमृत के समान शांत शीतल करने वाली। वेद शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है भगवान की कथाएं कान में जाने के साथ ही हृदय को शीतल कर और उसको परम अमृत में बना देती हैं। ये कथाएं कहती हैं श्रीमदाता समस्त श्री शोभा को देने वाली है। इन कथाओं का जो दान करते हैं वो कहते हैं महापूजा, उनके समान जगत में कोई उदार व्यक्ति महादानी है जो हरिनाम दान करते हैं भगवान की कथाओं को दान करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने जगत भर में जो कृष्ण नाम जान किया इसलिए उनको कहा जाता है नमो महावदन न्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। चैतन्य महाप्रभु जी ने विश्व में बाघ भालू हाथी मनुष्य जो सामने आया उसी को कृष्ण प्रेम किया, कहा कृष्ण नाम करो, जो सामने आया कृष्ण को देखा वो हरी हरी बोलने लग गए, यहां तक कि मुसलमान भी काजी तक भी जंगल के पशु पक्षी भी महाप्रभु जी को देख करके हरे कृष्ण करने और कुछ होता है। इसलिए महावदन न्याय के समान और दयालु दाता जगत नहीं, इन सब चीजों को लेकर के हम लोग भगवान का भजन करेंगे इससे बढ़कर के और कोई चीज नहीं है। और जितने भजन के तरीके हैं उसमें नाम का भजन सबसे श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर के और कोई तरीका नहीं है। इसे सरल सहज रूप में आप लोग अखाद्य से गंदे गंदे खानों से ये परिहार करते, किसी प्रकार का निशा नहीं करना चाहिए, धूम्रपान इत्यादि नहीं करना चाहिए, गांजा भांग अफीम इत्यादि से बच करके उतरा करके भगवान का पैसे कौड़ी की कोई जरूरत नहीं, ढोलक नहीं बजाने आता है कोई बात नहीं, नित्य नहीं आता है कोई बात नहीं, मोटा स्वर है उसमें भी को तो हरे कृष्ण ऐसा ये नाम है। इसलिए अभी आप लोगों को वृंदावन जाना होगा, आप लोग पासी में जन्म स्थान दर्शन करेंगे और उसके बाद में वृंदावन में जाएंगे, आज वहीं पर विश्राम करें उनका दर्शन करेंगे। अभी सुभानंद ब्रह्मचारी जी आप लोगों को दो चार शब्द बतलाएंगे।